आप देखिए कि इन आयतों को पढ़ने के बाद जो पिछली सूरत में हमने पढ़ा था ना कि सूरत दाहर में बहुत ज्यादा डिटेल थी जन्नत की, वहां था ऐन उन जारिया, चश्मे थे। यहां ऐसे लगता है कि जन्नत का ये कोई और ही दर्जा है कि जहां बॉटल्स के अंदर मशरूब पेश किए जा रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना कि चश्मे है, सलसबील है, आगे फिर एक दो सूरतों में आएगा। तो बस ये लोगों के आमाल के एतबार से उनके मुख्तलिफ मुकाम है, दैट्स इट। इब्ने उमर कहते हैं कि सबसे नीचे का जन्नती अपने मुल्क और मलकियत के 2000 साल तक की राह देखेगा, और सबसे आखिर की चीज नजरों के सामने ऐसे होगी जिस तरह सबसे अव्वल चीज यानी दूर की चीज भी जन्नती को करीब दिखेगी। अल्लाह अकबर। फिर यहां देखिए रहीकुम मख्तूम का लफ्ज है, यही है वो खूबसूरत नाम जिसको हम सीरत की एक किताब मौलाना सफी रहमान मुबारकपुरी की पढ़ते हैं, शाह फैसल अवार्ड याफ्ता बुक है। उसका नाम भी इसीलिए रहीकुम मख्तूम है कि नबी की जिंदगी की नुचड़ी हुई शराब यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम पढ़ने के काबिल किताब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाए अल्लाह ताला उसे रहीकुम मख्तूम पिलाएगा, यानी जन्नत की मोहर वाली शराब जो किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए इसे अल्लाह जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहनाए अल्लाह ताला उसे जन्नती सब्ज रेशम के जोड़े पहनाएगा। तो ये है क्वालिटी, ओपनली होगी बंद होगी। और इसी तरह पीछे भी एक जगह आया था ना कि लिमिस लिहा जफल या मलिल आमिलून, ऐसी चीजों के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। और तस्नीम का लफ्ज जहां आपने पढ़ा है हमारे यहाँ नाम भी है, तो जन्नत की बेहतरीन शराब का भी नाम है और नहर का नाम है कि जिसमें से लोग पिया करेंगे और कुछ को पिलाया जाएगा। अब आखिरी चंद आयतें, दुनिया में कीमत क्या अदा करनी है इस जन्नत की थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आयतें बड़ी आसान होंगी। आप देखिए जो कुछ भी हम जन्नत के बारे में पढ़ते और सुनते हैं क्या उसको पढ़ने के बाद किसी के दिल में जन्नत की ख्वाहिश नहीं होगी, सबको होगी ना। खासतौर पे ये जो बुक है इनकी जन्नत का बयान, अगर आप इसका इंडेक्स देखें ना तो इन्होंने शुरू में एक तो काफी लंबा चौड़ा यानी एक मजमून टाइप पे ये जन्नत की सारी बातें होती हैं, वो अपनी जगह एक पूरा मजमून है। लेकिन अगर आप ये देखें ना, जन्नत कुरान मजीद की रोशनी में, जन्नत की शान, जन्नत की वसत, जन्नत के दरवाजे, जन्नत के दरजात, जन्नत के महल्लात, जन्नत के खेमे, जन्नत के बाजार, जन्नत के दरख्त, जन्नत के फल, जन्नत की नहरें, जन्नत के चश्मे, नहरे कौसर, पहले जन्नत का खाना पीना, अहले जन्नत के लिबास और जेवरात, और इसी तरह से आगे लंबी लिस्ट है। एक एक चीज जन्नत के बारे में अहदीस और कुरान की जो आयतें उसको जमा कर दिया गया, इस सब को पढ़ ले और वफी ज़ालिक फल यतनाव फसल मुतनाफ। आज हमारा कल्चर क्या बन गया है कि हम जन्नत की बातें ही नहीं करते। हमारे बच्चों को शौक है डिज्नीलैंड जाने का, उनको शौक है सी वर्ल्ड जाने का, किसी हद तक उनको नियाग्रा फॉल देखने का भी शौक है, उनको एफिल टावर देखने का भी शौक है। इसी तरह दुनिया में जो बड़े बड़े अजूबे हैं उनकी ख्वाहिशात हैं, जन्नत पूछें तो कहते हैं पता नहीं अम्मी को पता होगा, अम्मी से पूछ लें, पूछ के तो देखें। वजह क्या है? हमने उनसे बातें नहीं की। तो यहां अमल के लिए लिखिए कि अपने बच्चों से और अपने घर में जन्नत कल्चर बनाए, छोटी छोटी बातों में बच्चों को इतनी रग़बत दे दें। एक माँ थी तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो हर चीज़ जो बच्चे दुनिया में होते हैं ना मांगते हैं या झगड़ते हैं, या एक भाई ने दूसरे भाई की कापी ले ली, कुछ भी शॉर्पनर ले लिया, तो फिर माँ उनको कैसे समझाती थी कि बेटा अल्लाह जन्नत में देगा, चल हम वहाँ अच्छी चीज़ लेंगे। अब बच्चा कहीं जाके चीज़ को देके कह रहे मैंने ये लेनी है, तो आप कभी दिला दें, कभी कहें बेटे इसको जन्नत में लेंगे, तो वो बच्चा इतना ज़्यादा एंक्शियस था जन्नत का, कहता अम्मी हम जन्नत में कब जाएंगे। तो आप देखिए अगर आप इस जुमले को किसी बड़े की जुबान से पूछें, आप कहें अल्लाह जी मैं कब जाऊंगी जन्नत में, तो यही तो तड़प है जिसका सूरह फजर के आखिर में हम सुनेंगे जिक्र, या ये तो हन नफ्सुल मुतमईना। मोमिन तो इस दुनिया से भागना चाहता है, वो तो घड़ी देखता है कब है, कब होगा, अच्छा कब घड़ी आएगी जन्नत की, मौत की कब आएगी, अच्छा मैंने अपना सामान पैक किया हुआ है, मैंने किसी का हक तो नहीं मारा हुआ, कोई हिसाब तो नहीं लिखा पड़ा बगैर रह गया, क्या है वो तो पूरी तैयारी से बैठ जन्नत के लिए। तो बच्चों से जन्नत की बातें किया करें शौक की हद तक, रग़बत की हद तक। और लेकिन उसमें याद रखिए एक माँ का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कहीं बात कर दी, बेटी थी बच्ची थी, तो माँ इस तरह की बातें बता देती थी, उसने ये भी बता दिया कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे। वो बच्ची अगले दिन स्कूल पहुंच गई, उसने जाके अपनी दोस्तों को कहा तुम तो नहीं जन्नत में जाओगी। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मेरी अम्मी ने बताया कि वो जन्नत में एक मुसलमान जाएंगे। अच्छा उसने जब थोड़ी सी बातें की तो दोस्त, छोटी बच्ची थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा अच्छा अभी हम कहाँ जाएंगे, कहा तुम तो आग में जाओगी। वो बच्चों बच्चों में ऐसा मामला हुआ कि टीचर्स आ गए और उन्होंने फिर उनकी माँ को कॉल किया कि ये आप क्या करें, आपकी बच्ची मरे, बच्चों को थ्रेट कर रही है। तो आप सोच सकते हैं ना, बच्चों के जहन के मुताबिक बात करें। और याद रखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे रुई के गोले ही रहें बड़े होके भी, तो कोई नेगेटिविटी ना दें। ये अधूरी जुमले, कच्ची बातें, काफिर का फर्क, उसका फर्क, ये आग में जाएंगे जन्नत, ये सारी उम्र बड़े होकर उन्होंने लोगों से यही कुछ सुनना है। आप अपने बच्चे को प्यार और मोहब्बत से गूंदें, कोई नेगेटिव बात उसके दिमाग में डाले ना। आपने उसको बता भी दिया कि काफिर नहीं जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे, तो क्या इजाफा किया। तो जरूरत इस बात की कि हम इसकी कोशिश करें। अब अगली आयतों में हम उसी जन्नत की कीमत देखेंगे। बहुत अहम बात है, सूरत के थीम के साथ इसका ताल्लुक है कि जन्नत में जाना सब चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत देना सब नहीं चाहते। दुनिया में एक फिजी ड्रिंक आता है तो वो भी एक दो पाउंड का ही आता होगा। दुनिया में कोई अच्छा ड्रिंक लें तो कभी फ्री में नहीं उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग जन्नत की ख्वाहिश करते हैं लेकिन कहते हैं पैसे नहीं दूंगी। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत के लिए कुछ पे तो करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, आइए अगली आयतों की सूरत में देख लेते हैं कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह के लिए इंसान को अपना मजाक उड़वाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कीमत जो इंसान चुकाना नहीं चाहता ना, वो क्या है कि जब आप अल्लाह की मर्जी के बनते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप अपनों में बेगाने हो जाते हैं। जो कल तक शम महफिल थे आप वो तनकीद का निशाना बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना अजरमु, बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, कानु मिनल्लज़ीना आमनु यदहकून, वो तो ईमान वालों की हंसी उड़ाया करते थे। कैसे, वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब इनके पास से गुजरते तो आंखों से इशारे करते थे, यानी आंखें मारते हुए गुजरते थे। वइज़न क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन, और जब अपने वालों की तरफ लौटते तो दिल लगियां करते थे। वइज़ा राउहुम, और जब उनको देखते, किनको, ईमान वालों को, बिलाल को और हबाब को, तो क्या कहते, क़ालू इन्नहा उलाइल दौलून, देखो देखो ये हैं बेराह लोग, ये गुमराह, जुनूनी और एक्सट्रीमिस्ट, और देखें इनको क्या समझ आ रही है, और ये ऐसी बातें वैसी करते हैं, यानी बेवकूफ़ कहते हैं ये बुद्धू, क्या आपने ऊपर टेंट चढ़ा लिया, और देखो दाढ़ी रख के आगे। अल्लाह कहते हैं हालांकि वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिजीन, ये कोई इनके ऊपर निगेबान बनाकर तो नहीं भेजे गए थे कि कमेंट पास करें कि ये कैसे हैं, ये कोई इनके ऊपर कमेंटेटर बनाकर तो नहीं भेजे गए थे। चलो कोई बात नहीं, आज मंजर बदलेगा। अभी तक जितनी आयतें थी ना, ये दुनिया में ईमान वालों के ऊपर कुफार के कमेंट्स थे कि ये निंजा टर्टल बन गई, देखो वेट बढ़ गया, देखो क्या शक्ल बना ली, तंबू पहन गई, वो हो गई। कल तक लोग खुशियां मनाते थे आपको देखकर, आपके आगे पीछे फिरते थे, अब लोग आपसे जान छुड़ाने लग गए। ये जरूर होगा, एक बार ही होगा, ये एसिड टेस्ट है। बहुत सारे लोग अपना मजाक उड़ाए जाने के खौफ से जन्नत को ठुकरा देते हैं। वफीजाली कफल जतना फसल मुतनाफिस, उनकी लिस्ट से निकल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं हमेशा तो नहीं रहना, आओ देखो मंजर पलटता है। अब अगली आयतों में क्या, जन्नत और जहन्नम का मंजर। फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारि यदहकून, बस आज ईमान वाले काफिरों पर हंसेंगे। कौन से ईमान वाले, जिनका दुनिया में मजाक उड़ाया गया था, बिलाल, उमैया उनका मजाक उड़ाता था, लौटपोट हो जाता था, अबू जहल नबी सल्लम के ऊपर ओझड़ी डाल के ऐसे लौटपोट होके घस रहा था कि जमीन पर ना गिर जाए। ईमान वाले किधर होंगे, अलल अराइकी यंजुरून, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। और उनसे एक सवाल किया जाएगा, यदि बिलाल को इमेजिनेशन में लाइए, जन्नत में है, बड़े खूबसूरत तख्त पे बैठे हैं, और वहां से जहन्नुम में झांक रहे हैं, और उमैया को जहन्नुम में जलता देख रहे हैं। अल्लाह बिलाल से कहते हैं हल सुविबल कुफ्फार उमा कानु यफ्फलून, क्या इन कुफार को पूरा बदला मिल गया है जो कुछ वो करते थे। दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि बिलाल के आपका सीना ठंडा हो गया, जितना आपको इस्लाम लाने पे इस शख्स ने सताया, पत्थरों पे लिटाया, आपके पीछे जानवर छोड़े, बच्चों को पीछे लगा दिया, कुत्ते छोड़ दिए, क्या आज इस शख्स को इन सारे कामों पर जो सजा मिली है वो ठीक है। और याद रखिए कि ईमान वालों का मिजाज ये होता नहीं है कि वो किसी को सजा मिलता देकर खुश हों। लेकिन یہ بات حقیقت میں ہے کہ جب مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا ملتی ہے تو اس کے اندر ایک قسم کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں حق پہ تھا اور یہ باطل پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں جا کے یہ حساب چکائیں گے جو دنیا میں لوگوں نے آپ کا دین کی وجہ سے مذاق اڑایا تھا, وہاں جا کے یہ معاملہ ہوگا. اور آج اگر یہ چھوٹا سا مذاق نہیں اڑا سکتے تو پھر گھر میں بیٹھے. دنیا کا کوئی ڈرنک فری میں نہیں ملتا تو جنت کہاں سے فری میں مل جائے گی؟ کیا ہم اپنے آپ کو ایسے جنت کا قابل کر سکتے ہیں؟ اور یہاں دیکھیے, اہل توحید اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں. جب آپ سچے دین پہ آئیں گے لوگ کہیں گے بہک گئیں, باتوں میں آ گئیں, ان کا برین واش کر دیا, ایکسٹریمسٹ ہو گئیں. ایک بھوت ہے جو سوار ہو گیا عورتوں پہ آج کل, یہ دیکھنا سارا بھوت اتر جائے گا. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو باطل کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کمنٹس کی ضرورت نہیں, کل تم دیکھنا کہ یہ کیا ہوگا, پھر تمہیں پتہ چلے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا حل سبیبا, تو سبیبا اسیبا کے معنوں میں ہے, بدلہ دیے گئے. یعنی کیا کفار کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا, تو کیا پتہ چلا کہ اللہ قیامت کے دن حساب چکائے گا. آج اگر آپ نے اللہ والی بن کر اپنے رنگ روپ کو چھپا لیا, اپنے سٹینڈرڈ کو کم کر لیا لوگوں کی نظروں میں, اور آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا نیچے کر لیا, آپ نہیں دکھتی اب ایک ماڈرن خاتون, تو کیا ہوا؟ آپ ماڈرن خاتون بن کے کیا جنتی ہو جائیں گی؟ کیا آپ ہمیشہ کی آپ کی دنیا خوبصورت ہو جائے گی؟ آپ میں سے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ کبھی سچی خوشی نہیں ملتی تھی. آپ محفلوں سے ہو کے آئیں, آپ کٹی پارٹیز میں سے ہو کر آئیں, آپ کوئی کافی ٹیبل کے پہ جائیں, کچھ کریں, آپ کسی ریزورٹ میں جائیں, سمندر کے کنارے جائیں, سر سے پاؤں تک لوگوں کی مرضی کا بن کے جائیں, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ دل کے نشاط کے ساتھ واپس نہیں آتے. کوئی نہ کوئی بات کہہ ہی دے گا آپ کو, اور کچھ نہیں تو جل کے یہی کہہ دے گا کہ بڑے آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں, اور آپ بڑی ایسی ہیں, اور آپ کی یہ گاڑی کہاں سے آئی. کچھ نہ کچھ کوئی دل پر پتھر پڑے گا تو آپ آئیں گے. اس کے برعکس آپ حدوں میں رہتے ہوئے اللہ کے رضا کے لیے بنتے ٹھنتے جاتے آتے ہیں, اور آپ وہاں نہیں بھی بہت کوئی اپنے آپ کو شمع محفل بناتے, کیوں ہم کو ڈسپلے کی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں, لیکن آپ کا دل خوش آ کے آتا ہے. اللہ محجوب ان میں ہے, اللہ نے خود کو آج پردے میں چھپایا ہوا, ہم کیوں نہیں پردے میں خود کو چھپاتے؟ کیا مصیبت ہے ہمارے اوپر؟ صرف یہی مصیبت ہے نا, پھر بہت سارے کام نہیں ہوں گے. کیا مطلب کیوں نہیں ہوں گے؟ جو کرتے ہیں وہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک تصویر کسی نے ویڈیو بھیجی تھی, ایک عورت خاتون ہے اور وہ شاید پہلی خاتون تھی جو پائلٹ ہے, منہ کے نقاب کے ساتھ وہ جہاز چلا رہی ہیں, کوئی نہیں ان کو روک سکا. حلا میں ایک عورت جا رہی ہے, اور آپ دیکھیے یہاں تو عام طور پہ ویسے ہی منہ پہ ماسک اور ہیلمٹ ٹائپ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. پانی میں جو جاتے ہیں سب میرینز میں, اور جو پانی کی تہوں میں سے جا کے کچھ چیزیں نکالتے ہیں, وہ تو پورے کے پورے سیلڈ پیک ہوتے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ جس کو اس جنت کا یقین آ گیا وہ اتنی قیمتی ہے, پھر ان کو ادھر ہی پے کرنی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کبھی جنت سستی ہوگی نا, سیل پہ ہوگی تو لے لیں گے. جیسے دنیا کی چیزوں میں ہم سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ابھی مہنگی ہے سستی ہوگی لیں گے, تو یاد رکھیے اس دنیا میں جنت کی سیل کبھی نہیں لگے گی. خوب سن لو کہ لوگوں اللہ کا صلہ بڑا قیمتی ہے, اور اللہ کا صلہ جنت ہے. تو اس جنت کو پانے کی قیمت اگر نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, کوئی ہلکے پھلکے درجے کی کوئی چھوٹی موٹی جنت لے لیں گے, لیکن یہ اعلیٰ جنتیں جس میں ختام ہمیسک اور تسنیم اور وہاں کی خوبصورتیاں اور جنت کے جو لباس کپڑے وہ نہیں ملے گا. صرف رغبت دلانے کے لیے آپ کو جنت کی عورت کا حلیہ سنا دیتی ہوں کہ کیا جنت میں ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حال حلیے میں رکھے, اور دنیا میں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری کی روایت ہے کہ اگر جنتی عورت دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے. آپ نہ ایسا پرفیوم چھڑکیں آج کہ آپ بعد میں نکلیں اور خوشبو پہلے آپ کی باہر نکلے, جنت میں اللہ آپ کو خوشبودار کر دے گا. اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی ستاروں کو ختم کر دیتی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. جنت میں بڑھاپا بیماری اور موت نہیں ہوگی, یہ مسلم کی روایت ہے. یہی تو روگ ہیں آج, کیوں ڈاکٹرز کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیمار نہ کرنا, یہ تینوں چیزیں وہاں نہیں ہوں گی. جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں, اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے. इसके संग्रेजे मोती और याकूत के हैं और इसकी मट्टी जाफरान की है। तिरमिजी की रिवायत है। हम सब अपने ऊपर लेके सोचे, क्या हम नहीं चाहते कि हम जन्नत में जाएं? क्या अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे लिए जन्नत का जो क्राइटेरियन रखा है वो इतना नामुमकिन है, वो इतना मुश्किल है कि मैं तो उसको पा ही नहीं सकती, और मेरे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं, और मैं तो ये कर नहीं सकती, और मेरे लिए दिस एंड दैट। आप देखिए कितने उजर और बहाने पेश करते हैं हम खुद से। नहीं, मेरे लिए नहीं, इट्स ओके बट आई कैंट। तुम्हें पता नहीं मेरे शौहर कैसे हैं, तुम्हें पता नहीं मैं किन किन लोगों में जाके खड़ी होती हूँ और क्या करती हूँ। अल्लाह अकबर। अहले जन्नत बारीक रेशम और अतलस व दीबा का सब्ज लिबास पहनेंगे, सॉफ्ट ड्रेस पहनेंगे। आप आज दुनिया में सी थ्रू लिबास छोड़ देंगे, अल्लाह वहां देगा। अहले जन्नत हाथों में सोने के कंगन इस्तेमाल करेंगे, खालिस रेशमी कपड़ों का लिबास, खालिस सोने के जेवरात और खालिस मोतियों के जेवरात और मोती जड़े सोने के जेवरात भी अहले जन्नत इस्तेमाल करेंगे। अतलस और दीबा के अलावा सुंदस और इस्तबरक का लिबास भी अहले जन्नत पहनेंगे। अहले जन्नत चांदी के जेवरात भी इस्तेमाल करेंगे और अहले जन्नत का लिबास कभी पुराना नहीं होगा। जन्नती खवातीन, ये सुन ले, दुनिया में एक बड़ा काम है, कितने कपड़े पहने, कैसे क्या पहनूं, ये पहनूं कि वो पहनूं। चाहे आपकी अलमारी में 20 जोड़े लटकियों, पहनना तो आपने एक वक्त में एक ही है ना। जन्नत में इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। कैसे? जन्नती खवातीन बयक वक्त 70-70 जोड़े जेब तन करेंगी। खुश जो इस कदर उम्दा और आला होंगे कि इनके अंदर से इनकी पिंडली का गूदा तक नजर आएगा। यानी फ्लेयर्ड कपड़े हैं 70 उसके ऊपर लिए, उसके बावजूद अंदर से उसका हुसन दिख रहा होगा। जन्नती खातून का दुपट्टा कदरों कीमत में दुनिया जहान की सारी दौलत से ज्यादा कीमती है। जी वहां भी दुपट्टा है, चाहे वो खूबसूरती का ही होगा। खजूर की टहनी के रेशे से अहले जन्नत का लिबास तैयार किया जाएगा जो कि सुर्ख सोने की होगी। क्या होगा वो सुर्ख सोना और उसका लिबास आप पहनेंगी। अहले जन्नत बेहतरीन रेशम के रुमाल इस्तेमाल करेंगे, हैंकरचीफ्स। जहां जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है इस जगह तक जन्नतियों को जेवर पहनाया जाएगा। जन्नतियों को पहनाए गए कंगन की चमक के सामने सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। जन्नतियों के जेवरात में इस्तेमाल होने वाला एक मोती दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती है। जी रिवायत सुनाती, बड़ी प्यारी रिवायत है, मकदाम बिन मादी से है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शोहदा की अल्लाह ताला के यहाँ 6 फजीलतें हैं। यानी आप अल्लाह के रास्ते में फौत हो गए ना, हो जाते हैं अगर, या हो जाएंगे तो 6 खूबियां मिलेंगी। पहली बात, शहीद होते इनके सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे और जन्नत में उसे शहादत के वक्त से ही उसका मुकाम दिखा दिया जाएगा। फिर दूसरी, वो अजाब कब्र से महफूज रखा जाएगा। तीसरी, क्यामत के रोज बड़ी घबराहट से इसे महफूज रखा जाएगा। चौथी, इसके सर पर इज्जत का ऐसा ताज रखा जाएगा जिसमें लगा हुआ एक याकूत दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज से कीमती होगा, और जन्नत में इसका निकाह मोटी आंखों वाली 70 हूरों से किया जाएगा। याद रखे, जहां लफ्ज हूर आए तो खुद ही सोच लीजिए ये मुजाहिद है, ये वो मूछों मुंह पे बल देते हुए और नजरों की हिफाजत ना किए हुए मर्द नहीं है कि जो हूरों के नाम पर ही या तो कुछ और ही बोलने लग जाते हैं और या फिर खुश होने लगते हैं। हूरें मुजाहिदीन को मिलेंगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी होंगी। और फरमाया, छठा एजाज है कि वह अपने 70 अजीज और अकार की सिफारिश करेगा। ये तिरमिजी की रिवायत है। फिर आगे इसकी पार्टीज और महफिलें भी बहुत कुछ हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन वही बात है कि जिस चीज की ख्वाहिश थी वो सब कुछ मिलेगा। शर्त एक है कि आज आप कीमत देने के लिए तैयार हो जाएं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इस जन्नत का अहल बना दे। अभी तो हम नाअहल हैं, अल्लाह हमें अहल बना दे। और इसके अंदर कमी किस चीज की है? सुनकर मानने की। तो अल्लाह ताला हमें सुनकर मानने वाला बना दे। तिलावत सुनना चाहते हैं फिर? आयत 18 से 28 चूज करें ना। दिल तो पूरा ही चाहता है लेकिन शायद हम वक्त कुछ इस तरह आपको ज्यादा दे सकें डिस्कशन का।
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
جی کیا خواہش ہے دل میں سنتے ہوئے شیئر کیجیے جی آپ
بس یہ خوف آ رہا ہے کہ اب ہم تیسری سیڑھی پر چڑھ گئے ہیں اگر ابھی بھی ہم نے اپنا عمل کو تیز نہیں کیا تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ ہم سے بول دیا
جی بالکل اب تو ہمیں اور فکر لگنی چاہیے نا آپ دیکھیں جتنا اوپر جاتے ہیں نا اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ پاؤں پھسلا تو گریں گے تو نیچے سے گرے انسان تو سنبھل ہی جاتا ہے لیکن اگر اوپر جا کے گر جائیں تو پھر تو بہت مشکل ہوگا نا بچنا جی
اس کو بڑا خوشی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ سب کر سکے تو جنت ملے گی دوسری طرف اس کا خوف بھی آتا ہے اگر 50-50% چانس ہے کہ ادھر جانا کہ ادھر جانا
بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں آسان کر دی وہ ہمارے لیے آسان ہو بھی جائیں گی دیکھیے خواہش کر لیں پھر اللہ سے مانگیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کا ذکر کیا جنت میں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کیسے ہوگا لیکن جتنا آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں اس پہ غور و فکر کریں اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ چیز ممکن لگے گی نا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے صرف ایک امیجینیشن ہے اور یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں اور لگتا ہے کہ دس از دس 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 اور لائک دس حالانکہ اگر آپ اس کو شعور کے ساتھ سوچیں تو بات بالکل فرق ہوتی ہے ایک کوئی پریزنٹیشن آپ کو دکھانے کی ریکویسٹ تو آئیے دیکھتے ہیں
اللہ ہیز چوزن پیپل اے اسپیشل گروپ آف پیپل So people asked, who are these? Define them. The keenness of the companions, radiallahu anhum, to be at the top level, always led them to question whenever something like this was said. The best deed, the best words, the best people, what, who, how? Because they wanted to obtain that rank, that high rank. They didn't settle for just anything. They wanted to be at the top. And that's why Allah Azza wa Jal said, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ Allah was pleased with them. And they were pleased with Allah. They accepted anything that came from Allah. So they asked, who are they? Describe, define. He said, sallallahu alayhi wa sallam, those chosen people, this special group of people, He said, they are the people of the Quran. Those who memorize the Quran, those who frequently recite the Quran, those who study the Quran, those who teach the Quran, are the chosen people of Allah. Special people, special rank, by the virtue of the Quran, by the virtue of the Book of Allah, reciting, learning, memorizing, teaching, understanding, applying. This makes us worthy of being amongst those mentioned in the narration.
So, ye tab humne khud decide karna hai na ke hum chosen banna chahte hain ke nahi. Chahta to har ek hi hai, par har ek ban kyun nahi pata? Iski wajah ye hai ke wo people of the Quran banne ke raste mein jo rukavatein hain aur jo uski qurbani hai na, wo deni mushkil lagti hai. Otherwise تو ہر انسان اسی خواہش میں جیتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو مجھ سے کرا لے کے میں چنا جاؤں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ دوڑ لگی بھی ہے نا لوگوں کی کہ کسی طرح سے میں چنا جاؤں, کسی طرح سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو, کبھی کچھ ہو کبھی کچھ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کچھ تو. جی, سن کے ماننے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. یہ بہت بڑی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, لگتی تو بہت چھوٹی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑی ایک قسم کی چیز, جس کو اگر واقعی ہم اپنے اوپر لیں تو بہت جلدی ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. جی, کوئی اور بات؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جب میں نے کل یہ کلپ دیکھا تھا تو مجھے شکر ادا کر رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں سب آ رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. کچھ کمیاں ہیں اعمالوں کے اندر, کوششیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری کوششوں کو قبول کرے اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. لیکن یہی بات ہے کہ اس چیز پہ ہمیں نہیں کہ بس ہم نے پڑھ لیا یا 30 پارے مکمل کر لیے, یہاں نہیں رکنا. ہم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے, ہم نے آگے کا سوچنا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. صرف یہ ایک چیز نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا, اب ہماری ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے اور ہم نے بھاگ بھاگ کے انشاءاللہ کام کرنے ہیں. اور صرف اس عربی مینر میں نہیں کرنے, ہر جگہ ہم اپنے طریقے سے سوچیں کہ کہاں ہم اس خیر کو پہنچا سکتے ہیں.
کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا کہ کسی کو اللہ اپنا کہہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس, کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے گھر والے ہیں, اہل سے ہیں, یعنی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی من ہوں, وہ کون ہے؟ یعنی اللہ کے بھی کوئی گھر والا ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں وہ کون ہے, ہم اہل القرآن, وہ قرآن والے ہیں, وخاصتہ, اور وہ اس کے خاص لوگ ہیں. تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نا پھر سناؤ آج ٹھیک ہو, اللہ رائے کی انظرون تعریف فی وجوہ ہم نظرت نہیں یسقون امر رہی کے مختوم خطام ہو مسک و مزاج ہو. کیا کیا میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شوق کو بھاگنے کے لیے رکھا ہے. جی, آپ
ایسی سوچ ہی رہی تھی کہ جو مجھے ادھر قرآن کی پہ آتی ہے تو میں سوچی سی کیسے کسی کو پہنچاؤں, تو ادھر میری نند کا واٹس ایپ میں میسج آیا کہ آپ نے بھول میں مجھے کچھ بیچ دیا, یہ قرآن کی آیت سورہ جو آپ سیکھ رہی ہیں کہتی اور بیچ.
یہ کہا کہ یہ بھول بار بار کرو.
یہ آپ اگر کوشش کریں گے دل میں سوچے کہ اللہ میں کیسے یہ کروں, وہ خود ہی کو راستہ دکھا دیتا ہے.
فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آج ہماری دنیا میں جس طرح بھاگ دوڑ ہوگی, یہ دوڑ انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.